चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके चरणों में नमस्कार। तो मेरी अपनी बात हुई थी, प्रत्येक साधना में, प्रत्येक साधन के मार्ग में जैसे मुसाफिर को राह खर्च की, रास्ते के साथी की, रास्ते में काम आने लायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदाचार की आवश्यकता होती है। सदाचार के ये भी आप सुन रहे थे, यम नियम आदि, दैवी संपत्ति आदि, मनुकथित दश धर्म, भागवतोक्त 49 धर्म, ये सब आवश्यक होते हैं। ये पाया है, किसी भी मकान की जब तक नींव न हो तब तक मकान का खड़ा होना और स्थायी रहना कठिन होता है। नींव की आवश्यकता होती है, तो सदाचार, दैवी संपत्ति, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः, उपनिषद में आया कि जो दुश्चरित हैं, असमाहित चित्त हैं, उन लोगों को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो सदाचार की बड़ी आवश्यकता, ये पाया है, नींव है ये। इस नींव के बिना इस साधना का प्रसाद महल खड़ा नहीं हो सकता। तो ये खास बात ध्यान में रखने की है। और इसके साथ साथ एक चीज और है जिस पर शायद सवेरे बात हुई थी, नहीं याद नहीं, जो नींव भी लगा देती है और महल भी उठा देती है और रक्षा भी करती है, वो है भगवान की कृपा। भगवत कृपा का अवलंबन हो, अपना सारा असामर्थ्य, हमारी सारी निर्बलता हमारा सारा अपौरुष और इसके विपरीत हमारा सारा पाप, हमारी सारी बुरी चीजें यदि हम भगवान की कृपा का आश्रय करें, वास्तविक कहने मात्र को नहीं तो भगवान की कृपा से असमर्थ के सामर्थ्य भगवान, निर्बल के बल भगवान अपने बल से उसका सारा कार्य सुसंपन्न कर देते हैं, सफल कर देते हैं। इसमें इतनी ही बात है कि भगवान की कृपा का आश्रय अधूरा नहीं। रोगी आदमी रोग मुक्त होकर वैद्य के पास जाए ये आवश्यक नहीं, परंतु वैद्य के पास जाए समर्थ वैद्य के पास, निपुण वैद्य के पास, सत्चिकित्सक के पास, परंतु जाए विश्वासपूर्वक और उससे कह दे कि मेरे पास तो न कोई बल है न शक्ति है, कुतत्थ कहता हूँ, लेकिन आपके संरक्षण में आ गया, आप अपने ही आश्रय में मुझे रखिए और मेरी चिकित्सा कीजिए। तो जैसे ये डॉक्टरों के अस्पतालों में नर्सिंग होम होते हैं ना रोगियों को रखने के लिए, इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में बड़ा बृहत नर्सिंग होम है, सारे भवरोग के रोगियों को रखकर उनकी चिकित्सा करने की। पर उसमें यही बात है कि जो वहां रहना चाहे अपने दूसरे आश्रयों को छोड़कर उनको वहां स्थान मिलता है। रोगी तो है, उसमें दोष तो है, अभी उसके मलिन अंतकरण का परिशोधन नहीं हुआ है, कमजोरी है और कुपथ भी करता है। पर वहां जाकर जब रहेगा तो कुपथ करने को उसे अवकाश नहीं मिलेगा, वहां जो देखने वाले लोग जो हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, ऊपर वाले, वो सब देखेंगे कि वो कुपथ न करने पावे, कुपथ वाली चीज उसके पास नहीं आने देंगे, वो तो परतंत्र है ना। ये एक सुंदर साधना की धारा है कि जिसमें साधक परतंत्र होकर साधना करता है, शरणागति का अर्थ ही है परतंत्र साधना, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप कर। अपने नहीं बढ़ सकता आगे, अपने नहीं चल सकता, पैर में ताकत नहीं, राह का खर्च पास नहीं, बीमार है, तो वो अपनी स्वतंत्रता किसी समर्थ को दे देता है और वो समर्थ उसकी स्वतंत्रता को अपने अधीन करके उसे अपने परतंत्र बनाकर अपने इच्छा अनुसार उसे चलाता है। तो या तो वो वहां रहता नहीं, और रहता है तो भगवान की परतंत्रता में रहता है, पर एक विचित्र बात है कि वहां भर्ती न हो तब तक तो चाहे न हो, पर वहां भर्ती होने के बाद वो डॉक्टर छोड़ता नहीं। एक बार जो शरणागत हो गया, उस शरणागत भक्त को अगर वो वाकई शरणागत हो गया तो उसको सब प्रकार से निर्भय कर देना वहां का व्रत है। एतद् व्रतम् मम, सुखदेव प्रपन्नाय तवा समीपति याचते। एक बार भी, एक ही बार होता है संप्रदान, दान, समर्पण, दो बार नहीं होते। हम लोग जो बार बार अपने को भगवान के समर्पित कहते हैं, मानते हैं, कि कहते हैं ले लो महाराज ले लो, पर देते नहीं। और जहां दिया और लिया दोनों चीज संप्रदान और ग्रहण हो गए, उसके बाद भगवान छोड़ना जानते नहीं। लेकिन वो अपनी निर्बलता, अपने दोष, अपना असामर्थ्य, अपनी शक्तिहीनता और अपने दोषों को दूर करने की उसकी वास्तविक या असली इच्छा, ये जब होती है तब वो समर्थ को खोजता है। पूरी निर्बलता आनी चाहिए और अपने बल का भरोसा सर्वथा मिट जाना चाहिए और अच्छे होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जो लोग दंभ करते हैं ना, ज्ञान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वो तो साधक ही नहीं है, वो तो दंभी दुराचारी हैं। वे तो अपनी नीच स्वार्थ सिद्धि के लिए वेश धरते हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा है साधकों की जो असली हैं, तो उनको भी भय है कहीं बुरा संग हो जाए, वो भी गिर जाए, तो वो क्या करें। अपने को असमर्थ पाकर जहाँ नित्य पहरा लगता है, जहाँ कुपथ्य की चीज अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, जहाँ देख रेख करने वाले बड़े अच्छे सदाचारी और सबल उपचारक हैं, वहाँ अपने को भर्ती करा दे। और वो है भगवान के चरणारविंद की शरण में भर्ती हो जाना। तो वो भक्ति बिना निर्बल प्राचे नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, पिछली साख भरो संतन की, अड़े संवारे काम। वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बड़ा विश्वास, विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास गवाही है बहुत सी, पिछले संतों का आचरण, उनका जीवन साक्षी है इस बात का कि जब कोई उनका काम अड़ गया तो भगवान ने उनके काम को सुधार दिया। पर किसका अड़ गया और किसका सुधार दिया? जो बड़े निर्बल हो गए और जिन्होंने राम के बल का आश्रय कर लिया, उन्हीं के बल राम होते हैं। निर्बल के बल राम, बलवान के बल भी राम ही हैं, पर बलवान राम के बल को मानता ही। बलम बलवसाम चाहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ। प्रत्येक बल वहीं से आता है, परंतु जो बलाभिमानी लोग हैं वे भगवान का बल नहीं मानते, अभिमान का बल मानते हैं। पर ये जो निर्बल है ये भगवान का बल मानता है, तो भगवान का बल उनकी रक्षा करता है, काम करता है। उदाहरण दिए, उदाहरण है तो भक्तों के, पर पारमार्थिक नहीं। पर भगवान के जैसा सवेरे बात हुई थी, परमार्थ और लौकिक का भेद नहीं है। उनके लिए छोटे काम भी वैसे ही, बड़े काम भी वैसे ही, कल्प वृक्ष से जो जैसा चाहे। बुरा तो नहीं करते, चोरी हमारी भगवान बना दें, हमारे हम कहीं खून करने जाएं भगवान सहायता कर दे, तो नहीं करते। बुरे काम में अच्छा डॉक्टर जो है हमारी मुंह मांगी दवा नहीं देता, चाहे वो हमारा मन कितना उसको खाने पीने का हो, वो जानता है कि इससे बीमारी हो जाएगी, तो नहीं देता, नहीं देता। नारद जी ने स्त्री को मांगा, नहीं दिया, नहीं दिया, साफ सह लिया उनका, गालियां सह ली उनकी भगवान ने, पर मुंह मांगी चीज नहीं दी, नहीं दी। तो बुरी चीज देते तो नहीं, पर अच्छी चीज लौकिक भी है तो मुंह मांगी भी दे देते हैं, पर देते हैं वहां पर जहां उनका आश्रय होता है। तो दो उदाहरण देते हैं, जब लग गज बल अपनो बरतो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे आए आधे नाम। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथा है और पुराणों में भी, वो गजराज अरण्य में रहता और बड़ा बलवान यूथ कैसे था, उसके यूथ में उसके दल में हजारों बड़े भारी हाथी और हथिनियाँ थी, बड़ा उनका दल था और सारा जंगल वो बड़ा बृहद वन उनके द्वारा आक्रांत था, सब जगह वो छाए हुए थे। एक दिन वो हाथी चला गया सरोवर में, स्नान किया, खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। इतने में ग्रह ने आके पैर पकड़ लिया। तो हाथी के मन में तो बड़ा अभिमान था कि क्या है ये जंतु को अभी पैर से पीस डालेंगे। कसमसाया, बहुत चेष्टा की, परंतु ग्रह ने छोड़ा नहीं। तब हसनिया हाथी तो दूसरे बाहर निकल गए, बोले अब अंदर रहेंगे तो कहीं हमारे पैर पकड़ ले, तो बाहर निकल के अपने को बचाते हुए सहायता करेंगे। ये बुद्धिमानी भी है और स्वार्थपरता भी है, जगत का यही स्वरूप है। घर वालों भी, जब कोई घर वाला फंस जाता है, बोले भाई प्लेग प्लेग का आक्रमण हो गया, तो बुद्धिमान घर वाले और मरने से डरने वाले भी घर वाले, दोनों ही बातें होती। बोले भाई ये बुद्धिमान है, घर भर में रोग फैल न जाए इसलिए अलग रहो। टीबी का रोगी है तो बोले है तो घर का ही अच्छा होना चाहिए, दवा भी कराते हैं, परिश्रम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, मन में दर्द भी है, पर अलग रहते हैं इसलिए कि हमको लग न जाए, इसलिए हम मर न जाए। भय भी रहता है पर बुद्धिमानी भी रहती है, पर असल में गहरे में जाके देखा जाए तो भय अधिक रहता है। तो हाथी सनिया सब बाहर आ गए, बाहर से सहायता करेंगे। तो अब वो जो जो ग्रह अंदर खींचने लगा और ये जाने लगा हाथी का शरीर अंदर, तो उसने पुकारा तो हाथियों हथियों ने क्या किया बाहर वालों ने, कि सूंड और पूंछ से संबंध किया सबका, एक की पूंछ को दूसरे के सूंड ने पकड़ा, उसकी पूंछ को उसने उसकी सूंड ने पकड़ा। इस प्रकार एक बड़ी दूर तक कतार लग गई बाहर से खींचने वालों की, बड़ा जोर, वे तमाम जोर लगाकर बाहर से खींचने लगे, पर जल में ग्रह का बड़ा जोर था और ये दोनों ही पहले के शापग्रस्त लोग थे, तो ग्रह का जोर इतना पड़ा कि हाथी को अंदर वो घींच के ले गया, खींच के ले गया। तमाम हाथी सनिया उसके पीछे जब जाने लगे, बोले भैया आप तो छोड़ दो, एक ही मरेगा, इसके लिए तो उपाय नहीं, सब साथ मर जाए ये तो बुद्धिमानी नहीं, सब अलग हो गए। अब वो बस एक झटका और लगता डूब जाता, जरा सी सूंड बाहर उसने उठा के रखी ऊंचे करके, कमल का एक पुष्प था दूर से उठा लिया। जब लग गज बल अपनो बरतो, नेक सरो नहीं काम, अपना बल और अपने साथियों का बल, ये अपना ही बल था भौतिक बल। जब तक भौतिक बल का उसने प्रयोग किया, अपने में निर्बलता का प्रत्यक्ष बोध नहीं किया, जब तक बाहरी बल का भरोसा रहा, तब तक भगवान ने उसको बचाया नहीं, नहीं बचाया। लोक सरो नहीं काम, जरा भी उसका काम सरा नहीं, परंतु निर्बल है बलराम पुकारो। जब वो हाथी ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं रहा, न कोई सहायक है, न कोई आवाज सुनने वाला, न कोई बचाने वाला, तब उसने भगवान को पुकारा। तो वो कहते हैं कि नारायण कहा उसने, तो नारा शब्द आधा तो उच्चारण हुआ और पूरा बोलने के पहले भगवान आ गए। भागवत में आता है कि उसको दिखाई दिया गजराज को दूर से गरुड़ आते हुए, गरुड़ पर भगवान सवार, और दूर से उसने देखा तो उसने कमल उठा करके अर्पण करने चाहा। उसके बाद ये वर्णन नहीं आता भागवत में कि वो गरुड़ आया, उतरे, गरुड़ ठहरा, हरिराज रास ही वो तो आया है कि भगवान प्रकट हो गए, तो इसको देखा संतों ने, वो कहते हैं कि गरुड़ जो है वो इच्छागामी है, गरुड़ की चाल कितनी, स्पीड कितनी चलने की, उसका जितनी इच्छा करे उतनी, जितना चाहे उतना चल सके। और यहाँ भगवान को जल्दी लग रही थी, तो इन्होंने कहा जल्दी चलो, एक तो उसकी इच्छा शक्ति की चाल, फिर भगवान ने कह दिया जल्दी चलो, पर भगवान को उसकी चाल सहन नहीं हुई, देर कर रहे हैं। तो दीखे तो सही, तो गरुड़ को छोड़ दिया, वही अंतर्धान वो आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए भगवान, आए आधे नाम निर्बल के बलवान, आ गए बचा लिया। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत देते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई साजन सजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। दुशासन ठीक रहा, एक वस्त्रा राज रानी है, सभा में इस प्रकार से कभी आई नहीं, आई सभा में कहीं तो राज महिषी पटरानी के रूप में आई, सिंहासन पर विराजी, अभिनंदन प्राप्त किया, सेवा प्राप्त की, पर जिस रूप में आज वो लाई गई ये बड़ा विकट रूप, एक बड़ा बलवान दुष्ट केशों को पकड़े हुए खींच कर राज दरबार में ले आया, हजारों हजारों लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बूढ़े बड़े बैठे, और बड़े बलवान पांच पति बैठे, उनके सामने उसका भयानक तिरस्कार होने लगा। बदजबान तो लोगों ने कही हूं, एक विकर्ण ने उस समय साहस किया था, दुर्योधन के भाई ने, और कोई नहीं बोला, उसने कहा अन्याय हो रहा है, उसके कर्ण ने बैठा दिया दबा कर, कोई नहीं बोला, भीष्म नहीं बोले, ये पीछे की कथा आती है ऐसी कि जब भीष्म का पतन हो गया, सरसैया पर भीष्म सो गए और ज्ञानोपदेश करने लगे, कि द्रौपदी जी भी सुनने वालों में थी, कि द्रौपदी जी को जरा हंसी आ गई एक दिन, तो पितामह ने पूछा बेटी हंस क्यों पड़ी, अप्रासंगिक चीज थी ना, तो मेरी दादाजी ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म बड़े नीतिमान भीष्म बोले कि भाई देखो, जो कुल वधुएं होती हैं अच्छे घरों की स्त्रियां, ये बेमतलब हंसा नहीं करती, उनके हंसने का भी कोई कारण होना चाहिए, तो तुम बेमतलब हंसो ये तुम्हारे में दुर्गुण नहीं है, तुमने जरूर किसी कारण से हंसा है, बताओ। द्रौपदी बोली महाराज बड़ा संकोच होता है बताने में, दादाजी कहा निर्भय बताओ, तुम डरो मत। बोले दादाजी मेरे मन में एक बड़ी शंका हो गई, आज सरसैया पर पड़े हुए आप इतने महान दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सबका कर्तव्य बता रहे हैं, जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी, सभा में हजारों लोग बैठे थे, मैंने पुकार के कहा दादाजी मेरी ओर देखो, मैं क्या हारी गई, क्या मुझको दुए में दाग लगने का हक था महाराज को, तो आपने उत्तर नहीं दिया, आपने कह दिया कि युधिष्ठिर से पूछो, तो मेरे मन में शंका हुई कि आज जो आप ज्ञान इतना उपदेश कर रहे हैं ये शायद आपने पीछे सीखा है, उस समय आपको ज्ञान नहीं था। भीष्म महाराज का सिर नीचा हो गया, बोले बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मैं कुछ बोल नहीं सका, ज्ञान तो मुझे उस समय था, उसके बाद भी सीखने का अवसर ही नहीं आया कब सीखता मैं, लेकिन मेरी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। दुराचारी का, दुष्ट का कुअन्न खाकर, अन्याय का अन्न मैं खा रहा था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। चोरी का अन्न था ना, दूसरे के हक का अन्न, पांडवों का जो हक था स्वाभाविक, उसे नहीं दिया दुर्योधन ने, वो दूसरे के हक का अन्न, बेईमानी का अन्न था, वो मैं खा रहा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं निर्णय नहीं कर पा। अब जब इस युद्ध में वो सारा खून निकल गया बाणों के आघात से, शुद्ध हो गया मेरा हृदय, तो मेरा जो ज्ञान विलुप्त था वो पुनः जागृत हो गया। ये बीच में बात इसलिए ये समझ लेने की है कि हमारी बुद्धि को दूषित करने में ये बुरा अन्न बहुत ज्यादा काम करता है। भला बुरा अन्न किसी के हाथ का अन्न उतना बुरा नहीं, उसमें भी परहेज की आवश्यकता है, बिना घृणा के, घृणा तो नहीं करनी चाहिए नरक के कीट से भी, उसमें भी वही भगवान है जो हमारे अंदर है, जरा भी अंतर नहीं। पर शास्त्र के अनुसार मर्यादा की रक्षा आवश्यक, और उसका भी असर होता है। जिस प्रकार के चार चीजों का असर मानते हैं, पहनने का कपड़ा, वस्त्र, ये आसन जहाँ बैठते हैं और जहाँ सोते हैं वो बिछौना, और अन्न साथ खाना, किसी के साथ खाना, और स्पर्श, किसी को स्पर्श करके बैठना, इससे उसके जो विचार हैं अच्छे बुरे वो संक्रमित होते हैं, उसमें दूसरे में आते हैं। तो दूषित अन्न का सबसे बड़ा दोष करने वाला जो कारण है वो है चोरी, अन्याय, बेईमानी, बेहक का अन्न, ये सबसे बुरा है दूसरे की अपेक्षा। बेहक के अन्न से भीष्म तक की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो सकती है तो हम लोग बेचारे किस बात के मूली हैं, बताइए। तो बात कह रहा था मैं दूसरे द्रौपदी की, वहां भीष्म बैठे, द्रोण बैठे, बड़े बड़े राजा बैठे, सब ने मानो सबका स्वच्छ निकल गया, किसी ने विरोध नहीं किया। वहां पर उसने पांडवों की ओर देखा, देखा सिर नीचा किए, हथियार अलग रखे हैं, वो तो दे चुके, हार चुके। भीम के मन में बड़ा रोष था उस समय, भीम दांत पीस रहा था, बल्कि दो एक बार वो उसके मुंह से प्रतिज्ञाएं हो गई। जब दुर्योधन ने कहा अपने कपड़े को अलग करके जांग दिखा करके इस पर बैठ जाओ द्रौपदी से, तो बड़ा क्षोभ हुआ। भीम ने कहा जांग तोड़ूंगा अपनी गदा से। दुशासन ने जब केश खींचकर द्रौपदी को नंगा करना चाहा, हाथ लगाया, तब भीम ने कहा कि खून पीऊंगा तेरा। बड़ा जघन्य वहां का कांड था। द्रौपदी ने उस समय प्रतिज्ञा की कि जिन केशों को दुशासन ने खींचा है वो केश तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से धोए जाएंगे। खुले रखे अपने केश, और जब दूत बनकर श्री कृष्ण जाने लगे सुलह कराने के लिए, उस समय का प्रसंग है, द्रौपदी उनको अलग ले गई, उन्हें सखा कहती, कहा भाई तुम जा रहे हो सुलह कराने जाओ तो इन केशों को याद रखना पड़ता। केश दिखा करके कहा, ये दुर्दशा द्रौपदी की उस समय सबकी ओर से निराशा हो गई, द्रौपदी निर्बल हो गई। अब वो बिचारी क्या करे, 10,000 हाथियों का दल जिसकी जिसके भुजाओं में जो अत्यंत क्रूर हृदय और जो आमादा उस समय द्रौपदी के लज्जा हरण करने के लिए और कोई छुड़ाने वाला नहीं, उस समय द्रौपदी पुकारिए गोविंद द्वारका वासन।